नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। फोन पर बातचीत में दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रगाढ़ आपसी विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के आधार पर साझा प्राथमिकताओं की पहचान की। उन्होंने किसी भी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के दृष्टिकोण को दोहराया और इस खतरे से लड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जो वैश्विक व्यवस्था को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। भारत वायमर प्रारूप की बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष से हिंद प्रशांत क्षेत्र में उथल पुथल देखी जा रही है। उन्होंने वायमर प्रारूप की बैठक के लिए भारत को मिले निमंत्रण की सराहना की। इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्री शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से भारत यूरोपीय संघ संबंधों, हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ और यूरोप के साथ भारत के संबंधों में आज सबसे अधिक विकास की गुंजाइश है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया बहुध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में शामिल है। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय विश्व के लिए प्रतिबद्ध दो देशों के तौर पर इस समय वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पेरिस में फ्रांस की विदेश मंत्री जान नोएल बरेट के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि लगातार बातचीत संबंधों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में ये वृद्धि दर 6.5% थी। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष के लिए जीडीपी 201 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष ये करीब 187 लाख करोड़ रुपए थी। आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि जीडीपी में यह रुझान विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।
जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, ये एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं 7.4%, ये दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है अर्थव्यवस्था में भारत की, इतने सारे जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं अर्थव्यवस्था के सामने और अभी भी हैं, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें गति बनी हुई है। सर्विस क्षेत्र जो है उसका परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन का परफॉर्मेंस जो है, दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है।
केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना का पहला चरण इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। इस चरण में घरों की गिनती की जाएगी। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा। इस चरण में व्यक्तियों की गिनती होगी, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जनगणना इस वर्ष सितंबर में ही पूरी कर ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के जायजा लेंगे। श्री नड्डा प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कई जिला स्तरीय पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले पट्टली मक्कल काची पीएम के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके महासचिव इडापड्डी के पलनी सामी ने चेन्नई में पीएम के प्रमुख अंबुमणि रामदास के साथ मीडिया से बातचीत में ये घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया है। मंगोलपुरी रेलवे लाइन के पास 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी यहां रह रहे थे। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ये टूर्नामेंट 18 जनवरी से 1 फरवरी तक नेपाल के काठमांडू में होगा। इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाली 10 टीम अंतिम 4 जगहों के लिए मुकाबला करेंगी। क्वालिफायर मैचों के लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में बांग्लादेश, आयरलैंड, नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी और अमरीका है, जबकि ग्रुप बी में मेजबान नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।